सफा नंबर 249। अंग्रेज हसाई हैं तो क्या हुआ? क्या आपको इनकी इस्लाम दुश्मनी से इनकार है? हजरत अलामा भी इस जलसा में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक सुकूत फरमाया। मुझे तअज्जुब था और मुझसे बढ़कर उलमाए खिलाफत को, लेकिन आगे चलकर मैंने इनके अरशादात से महसूस किया कि इन्हें इस तरीक से इख्तलाफ था, तो इस बिना पर कि इसकी जमाम गांधी जी के हाथ में है और गांधी जी को सूरह ममतनहना की तलीमात से कोई सरोकार नहीं। जो भी बानियान तहरीक ने यह कैसे फर्ज कर लिया है कि हिंदू मुस्लिम इतिहाद हमेशा कायम रहेगा? उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये इतिहाद कायम ना रहा तो नतीजा क्या होगा? चुनाचा यही हुआ, गांधी जी ने तहरीक वापस ले ली, हिंदू मुस्लिम इतिहाद टूटा और मुसलमान मैदान में अकेले रह गए। मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा होता चला गया और हर तरफ बेदिली फैल गई, लेकिन इन हजरात अलामा के बरक्स इन दिनों मोतरजीन जो कह रहे थे कि मसलतन या इस ख्याल से कि हुकूमत के खिलाफ कोई अकदाम ना किया जाए, कादियानी जमात इस तहरीक की मुखालफत में सबसे आगे थी, हत्ता के इसकी तरफ से एक मबसूत रसाला भी शाया हुआ जिसमें मन जुमला कई एक दलाइल के इस तहरीक के खिलाफ एक दलील ये भी थी कि इसकी नौइयत सियासी है, मजहबी नहीं है। सियासत की मिसाल तो दीवार कहका की है, जो कोई इसे देखता है हंसना शुरू कर देता है और हंसता ही रहता है, लिहाजा जो कोई सियासत में हिस्सा लेगा सियासत ही में उलझा रहेगा। राकमुल हरूफ को इतराफ है कि इस रसाले की ये मंतक आज तक इसकी समझ में नहीं आई, ना ये कि किसी तहरीक की मजहबी नौइयत क्या होती है और सियासी क्या। नंबर एक, हिंदू मुस्लिम इतिहाद लेकिन जिसकी इस रूए सियासत कोई मुहक्म बुनियाद नहीं थी, लिहाजा ये इतिहाद जिस जोर और शिद्दत से कायम हुआ इसी जोर और शिद्दत से टूट भी गया। नंबर दो, हिंदुओं के नज़दीक ये कि अगर तहरीक कामयाब हो गई और हुकूमत ने मुसलमानों के मुतालबात तस्लीम कर लिए, सफ़ा नंबर 250, तो वो गैर मामूली तौर पर मजबूत हो जाएंगे। इन्हीं खतरा था कि इस सूरत में अगर इनके तल्लुकात इस्लामी ममालक से कायम हो गए तो मुमकिन है हिंदुस्तान पर फिर इस्लाम का गलबा हो जाए। इधर मुसलमानों को यह खदशा था कि अगर वो तहरीक जिसकी क्यादत गांधी जी और कांग्रेस के हाथ में है कामयाब हो गई तो ऐसा ना हो कि इनका वजूद हिंदुओं में जम हो जाए। दोनों एक दूसरे की सियासी ताकत से खायफ थे। अरशाद व मुसलमान अब भी मुर्दा नहीं, इनमें इल्मी और अमली हर तरह की सहूलियतें मौजूद हैं, ज़रूरत है इनसे काम लेने की। मैंने अर्ज़ किया लेकिन सरदस्त तो ये हालत है कि हम सियासी लिहाज से भी मुर्दा हैं और तहजीब व तमद्दन में भी दूसरों से दब रहे हैं। हम में ज़िंदगी पैदा होगी तो कैसे? आम ख्याल तो यही है कि कौमें पैदा होती हैं और मर जाती हैं। उंदलस और सकलीका की मिसाल हमारे सामने है, यही कुछ आज रूस में हो रहा है जहां इस्लाम बराए नाम ही बाकी रह गया है। अंदेशा है हिंदुस्तान में भी यही कुछ ना हो। अरशाद हुआ उंदलस और सकलिया में मुसलमानों की तबाही उम्मत की एक जुज की तबाही थी। उम्मत का वजूद तो बहरहाल कायम है, अलबत्ता ये ठीक है कि कौमें पैदा होती हैं और मर भी जाती हैं। कुरान पाक का भी यही फैसला है। नंबर तीन, लाकुल उम्मतुल अजल, यूनस 49। फिर कुछ तम्बल के बाद फरमाया, कौमें पैदा होती हैं और मर जाती हैं, ये एक आसान सी बात है जो समझ में आ जाती है, लेकिन बाद सूरतों में ये भी होता है कि कौम की हस्ती तो कायम रहती है लेकिन बज़ाहिर यूं नज़र आता है। मैंने अर्ज़ किया कुरान मजीद में आया है, कैफ़ा तहतल मौत, अगरचा मुझे कहना चाहिए था इन्नी यहिया हाजल अल्लाह, सफ़ा नंबर 251। फरमाया लेकिन ये मौत ज़िंदगी से बदल सकती है, बशर्ते हम अपने अंदरून ज़ात में तब्दीली पैदा करें, यानी इस मुकाम पर वापस आ जाएं जिससे हम चले थे। हजरत अलामा रुक गया, फिर फरमाया, याद रखो दुनिया की कोई कौम अपना असूल कौमियत छोड़कर जिंदा नहीं रह सकती। मौत जब ही वार्द होती है जब कौमें अपने असूल ज़िंदगी से मुनहरफ हो जाएं। आलम इस्लाम इस्लाम की बदौलत वजूद में आया, इसकी हस्ती इस्लाम से वाबस्ता है और इस्लाम ही की बदौलत इसमें फिर जिंदगी पैदा होगी। अली बख्श ने चिलम बदली और दुआ खाई, हजरत इलामा जरा सीधे होकर बैठ गया, फरमाया कानून कुदरत ये है कि अगर किसी कौम को जिंदगी की आरजू है तो इसे जिंदगी दी जाए। मैं खामोश था, थोड़ी देर के बाद फरमाया, तुम्हें मालूम है कुरान पाक की तलीम इस बारे में क्या है? मेरे जहन में इस वक्त आलम इस्लाम के जवाल की तस्वीर फिर रही थी, मैं गोया हजरत इलामा की जुबान में अपने आप से कह रहा था, जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी शहर, इनके मिट गए आबादियां बन गई हो गई। हजरत अलामा के सवाल से मैं गोया संभल गया। अर्ज किया, मैं क्या कह सकता हूँ, अलबत्ता मेरा जेन इस आयत की तरफ मुंतकिल हो रहा है जिसका अरशाद हज़कील नबी के रोया यानी बनी इसराइल की निशात सानिया की तरफ है। हम सफा नंबर 252, सूरत अल बकरा 269। बनी इसराइल को जिंदगी मिली, बैतुल मुकद्दस फिर से तामीर हुआ, कैद की जिंदगी आजादी से बदल गई। अरशाद हुआ ये सही है, लेकिन बनी इसराइल को जिंदगी मिली तो इनके इस ईमान की बदौलत की हमारी एक तकदीर है। नंबर एक, कैद बाबल के बाद 599 काफ मीम में बख्त नसर अर्ज फलस्तीन पर हमला आवर हुआ और यहूद पर फतह पाई। बैतुल मुकद्दस को तबाह बर्बाद कर दिया, हैकल सुलमानी का वजूद तक कायम ना रहा। ता अंका 539 काफ मीम में हक्षामंशी सल्तनत के बानी क्रोश आजम ने बाबल फतह किया। यहूद को इजाजत मिली कि फलस्तीन वापस चले जाएं और हैकल मुकद्दस इस सर नौ तमीर करें। ये दूसरी जिंदगी थी जो बनी इसराइल को मिली। मुलहजा हो सूरत बनी इसराइल आयात 4, 5, 6 व कसीना आला बनी इसराइल फिल किताब ला तनफसदन फिल अर्द मरतीन व ना अलन अला व कबीरा। नंबर दो, और सारी नोह इंसानी की तकदीर इनसे वाबस्ता। नंबर तीन, यानी खुद नोह इंसानी की तकदीर। मैंने अर्ज किया क्यों नहीं, इरशाद हुआ तो फिर समझ लो इस्लाम भी एक हकीकत है और ये हकीकत हमेशा कायम रहेगी। लिहाजा बावजूद जवाल और इनहतात आलम इस्लाम भी फिर जिंदा होगा और जरूर होगा। हजरत अलामा तो ये कहकर किसी ख्याल में डूब गए। अलबत्ता कुछ देर के बाद जब उन्होंने फिर हुक्के का कश लगाया तो मैं अर्ज किया, इजतमाई एतबार से तो तवानी यहया हाजुल्ला हाज अल्लाह यानी कौमों की बासत सानिया का जवाब मिल गया, लेकिन कुरान पाक ने इस सिलसिला में फर्द की। सफा नंबर 253, हयात बादुल मौत की तरफ भी इशारा किया है। इस एतबार से कैफ का मसला हल तलब है, यानी जिस तरह कुरान पाक में इसी आयत के बाद इसकी सराहत की गई है। नंबर 4, सूरत अल बकरा 260, फरमाया तुम्हारा इशारा क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सवाल की तरफ है कि ए अल्लाह तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। मैंने अर्ज किया जी हाँ इसी सवाल की तरफ। अर्शाद हुआ अल्लाह ताला ने कैफ का जवाब सरहन से दिया है। सरहन का तर्जमा आमतौर से ये किया जाता है कि जानवरों की तिक्का बोटी कर दो, लेकिन सरहन के इस तर्जमे से कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकी तिक्का बोटी कर दी, इनका एक एक जुज एक एक पहाड़ पर रख दिया और इन्हें पुकारा तो वो दौड़ते हुए इनके पास आ गए। कैफ का मसला हल नहीं होता। हाँ अगर सरहन के मानी है सुधाना राह पर लगाना तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि कैफ का जवाब मिल गया। फलसफियाना एतबार से बहरहाल मसला यह है कि जोहार की वो तरकीब जो अबारत है वजूद इंसानी से क्या एक दफा बिखर कर आला हाला फिर भी कायम हो सकती है। साइंस का जवाब इस सिलसिला में अगर मुस्बत नहीं तो मनफी भी नहीं है, इसके अमकान से बहरहाल इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर एक, इस अमर का कि वो क्या अमल है जो मौत के बाद रूनमा होता है और कैसे एक दूसरी जिंदगी की इब्तदा होती है। सफा नंबर 254। नंबर दो, मुलाहजा कीजिए मुस्लिम रिवाइवल में हजरत अलामा का मजमून के तबीयात की रूह से ऐन मुमकिन है कि जोहार की वो तरतीब जिससे एक इंसान वजूद में आया मौत के बाद फिर से कायम हो जाए। बाल्फाज दीगर माद जिस्मानी भी हो सकता है। मैंने अर्ज किया इसमें एक बात गौर तलब है। फरमाया क्या ये कि खलक अव्वल तो एक हकीकत है, इंसान खुद वजूद में आया दूसरों को वजूद में आता देखता है, लेकिन खलक आखर का फहम नहायत मुश्किल है जैसा कि आपने खुद भी अरशाद फरमाया और जिसे कुरान मजीद ने इसकी बासत सानिया पर हुज्जत ठहराया है। काफ 15। नंबर 4, मुलहजा हो तश्कील जदीद अल हयात इस्लामिया खुतबा चहारम बास हयातुल बाद मौत। फरमाया कैसे है? आपका अर्शाद है कुरान पाक ने इस हकीकत को मुख्तलिफ मसालों से समझाया है। मसलन जमीन का मुर्दा होकर फिर रूए देदगी हासिल करना, कुरान पाक ने ये मिसाल पेश की है और फरमाया है कजालिकल खरूज, लेकिन सवाल ये है कि ये अमल कैसे और कहाँ रूनमा होता है। सूरह काफ 9-11, अरशाद हुआ हयाती एतबार से तो हम यही कहेंगे कि खालक के अव्वल का अमल बातन मादर में रूनमा होता है, आगे चलकर आलम कायनात इसका जोला गाह बनता है, फिर इसके लिए मौत है, सफ़ा नंबर 255। एक गोशा ज़मीन और जिस्म का इन्हलाल व इंतशार, लेकिन इसके बावजूद इसकी वहदत कायम रहती है, लिहाजा वो फिर जिंदगी हासिल करता है। बाल्फाज दीगर बातन मादर की तरह बातन मर्तद में भी एक अमल रूनमा होता है, और यही अमल है जिसकी तकमील पर इसे एक नई जिंदगी मिलती है। वो गोया बातन मादर की तरह बातन मरकज से बाहर कदम रखता है। कजालिकल खरूज नंबर 2 वलादत पर। नंबर 3 अस्त आरा। हजरत अलामा के जहन में इस वक्त दरअसल कुरान मजीद का ये अरशाद था कि निशातुल औला की तरह एक निशात सानिया भी है। उन्होंने बात ख़त्म की तो मैंने कहा, आप फरमाते हैं ज़ात इंसानी एक वहदत है और ये वहदत खुद ही की वहदत है। फरमाया बेशक। मैंने अर्ज़ किया, यानी शऊर की वहदत बाल्फाज दीगर शऊर ज़ात का तसलसल। लेकिन साइंस की ज़ुबान में गुफ्तगू की जाए तो सवाल पैदा होगा कि जौहर में शऊर कहाँ से आया। नंबर 4 मुलाहिजा हो मुकदमा इसरार खुदी अशात अव्वल वो नुकता शऊर। अरशाद हुआ, साइंस की ज़ुबान में हम यूं कहेंगे कि शऊर वो हकीकत है जो इनके अंदर पहले से ही मौजूद थी। शऊर ही से गोया इनका वजूद है, लिहाजा शऊर का तसलसल हयात बाद मौत पर भी कायम रहता है। चुनाचा कुरान हकीम में आया है, क़यामत के रोज़ काफर कहेंगे लौ काना लाना करात। नंबर 5 अरादा रब्बी में देखिए तश्कील जदीद खुतबा। नंबर 6 अगर हमें फिर दुनिया की ज़िंदगी मिले अलबकरा 127 सफ़ा नंबर 256। फिर फरमाया ये सब मतलब के तरीक हैं। कुरान पाक चाहता है कि एक हकीकत बतौर हकीकत हमारे जहन में जागजीन हो जाए। नंबर 1 के खुदी का तसलसल कायम रहता है और इसलिए मौत का ये मतलब नहीं कि शौरे ज़ात कालदम हो गया। गोया खुदी अगरचा फानी है लेकिन मौत के बाद बहरहाल जिंदगी है और बका ने दवाम मुमकिन। हजरत अलामा रुक रुक कर गुफ्तगू कर रहे थे, आवाज़ में ज़ोफ़ था, कभी कभी ज़रा सी शिकायत दमकुशी की हो जाती। उन्होंने बात ख़त्म की और तकिए पर सर टेक दिया, मतलब ये था कि सीने को आराम मिले। फिर जब थोड़ी देर के बाद सर उठाया और मेरी तरफ देखा, जैसे सिलसिला गुफ्तगू जारी रखना मंजूर हो, तो मैंने अर्ज़ किया, इस सूरत में क्या हाफजे का तसलसल भी ज़रूरी है? नंबर 2 बासूरत वहदत हयात व हयात या वहदत शऊर। अरशाद व हाफजे का नहीं तशख्स से ज़ात का, तशख्स से ज़ात का तसलसल हाफजे पर मकूफ़ नहीं, इसका तल्लक खुद ही के एहसास से है और ये एहसास या शऊर अपनी जगह पर एक हकीकत है। नंबर 3 चुनच्चा कितनी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं। बाई बाय हमा हमारा शऊर ज़ात कायम रहता है, हाफजे का वजूद ही इस अमर की दलील है कि हाफजा व नासियान तो आम है। नंबर 4 और जिसकी बिना पर इनके मुनकरीन को भी कहना पड़ा कि किसी ना किसी रंग में इसे एक हकीकत मानना लाजम आता है, बकौल ब्रैडले। देखिए तश्कील जदीद खुतबा सोम। मैंने अर्ज़ किया, मगर ये एहसास बसा औकात दब भी तो जाता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है जैसे कालदम हो गया, यानी हमने अपने आप को खो दिया। असासे ज़ात की कमी, बल्कि फुकदान के मज़ाहिर नफ्सियात में बेशुमार हैं। सफ़ा नंबर 257। फरमाया ये दुरुस्त है, एहसास ज़ात की मुसलसल और हर लहजा मौजूदगी खुदी के इसरार में है, ये नतीजा है खुदी के इस्तकाम का। नंबर 5 और जिसके जवेद नामा में 3 मरले गनवाए गए हैं, शायद अव्वल शऊर ख्विशतन ख्वाहिश रा दीदन बनूरे ख्विशतन, शाहिद सानी शऊर दिगरे ख्वाहिश रा दीदन बनौरे दिगरे, शाहिद सालस शऊरे ज़ात हक ख्वाहिश रा दीदन बनौरे ज़ात हक। मैंने फिर सवाल किया, ये जो कुरान पाक में कम लबस्त का जवाब योमा और बाज़ योम दिया गया है, इससे क्या ज़माने की नफ़ी हो जाती है जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है? नंबर 1 के मौत और हयात बाद मौत के दरमियान बजर्ग का वजूद इबारत है, ज़माने की नफ़ी है, लिहाजा योमा और बाद योम का मतलब है ज़माने का साकत हो जाना। फरमाया हरगिज़ नहीं, इससे मुराद है मेयार ज़ुमानी का इख्तलाफ बा एतबार मरातब शऊर। नंबर 2 मरातब शऊर से तो साइंस जदीद नफ्सियात को भी इनकार नहीं। वैसे देखिए तश्कील जदीद खुतबा चहारम बास हयात बाद मौत। अब हजरत अलामा तकिए से टेक लगाए बड़े आराम और इत्मीनान से गुफ्तगू फरमा रहे थे। तबीयत बाफजला संभली हुई थी। फिर दफ्तर उठकर बैठ गया और फरमाया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूँ, जवेद की वालदा बअस्त सानिया हासिल कर चुकी हैं। बज़ाहिर हजरत अलामा जो कुछ फरमाया इसका मौजू ज़ेरे बहस से कोई तल्लक नहीं था और था भी तो बहुत दूर का। उन्होंने जो कुछ फरमाया दाफ्तन और बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर, गो सफ़ा नंबर 258, बातबार मौका व महल नहायत मुनासिब। अरशाद व मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे इसने खुद मुझसे कहा है, मेरा हशर हो चुका। जवेद की पुप्पी आजकल यही है, वो भी कहती है मैंने ख्वाब में देखा है, भाभी मुझे कह रही हैं जाओ बानों को देखाओ। मैं कुछ मुतज्जब था कुछ खामोश। हजरत अलामा ने फिर फरमाया, बाज़ औक़ात ख्वाबों में इस किस्म के अरशादात हो जाते हैं गो। ये फैसला करना मुश्किल है कि इन अशारों का तल्लक दाखली एहसास यानी महज अपने ख्याल से है या फिर वाक़ खारिज से कोई खबर मिलती है। फरमाया, ये खारिज से खबर मिलना भी ख्वाब की हालत में हो या बेदारी में एक बड़ा नाजुक और गौर तलब मसला है जिसका हल आसान नहीं। हजरत अलामा रुक गया, फिर अरशाद हुआ, मादी अलूम ने तो बेशक बड़ी तरक्की कर ली लेकिन मादी अलूम से इस किस्म के मज़ाहिर की तहकीक में कोई मदद नहीं मिलती। हमारी तवज्जो हयाती हयात और नफ्सियात पर होनी चाहिए। नंबर एक, ताकि मालूम हो जाए कि इनकी हसीयत कहाँ तक हकायक और कहाँ तक महज अल्तबास की है। उलमाए नफ्सियात की तहकीक व तनकीद को इस सिलसिला में फैसला कुन नहीं तो कम अज कम बाकी सब बातों से ज़रूरी और मुफीद मतलब तस्लीम करना पड़ेगा। हजरत अलामा लेट गए ताकि ज़रा आराम फरमा लें और हक की ने एक तरफ और हुक्के की एक तरफ फेर दी। इनके लिए मुसलसल गुफ्तगू करना बड़ी मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात थी और मैं कब से महसूस कर रहा था कि वो बहुत थक गए हैं। इतने में अली बख्श आ गया और इनके पांव दाबने लगा। हजरत अलामा ने करवट ली तो इस ख्याल से कि इनका इरादा नींद लेने का है, मैंने इजाज़त तलब की। इशारे से फरमाया, बेहतर। मैं बाहर आ गया, दोपहर से सुपहर हो गई थी। सहन में पहुंचा तो बच्चों की जर्मन अतालीक ने चाय के लिए रोक लिया। वो चाय के अहतमाम के लिए उठी तो हजरत अलामा ने सफा नंबर 259 ने फिर बुला भेजा कि हमारे साथ चाय पियो, कुछ और बातें करना है। मैं फिर ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और अर्ज किया, हाजिर हूँ। फरमाया, जवेदम शीन के साथ सिनेमा जा रहा है। फिर तस्वीर का नाम लेकर दरियाफ्त फरमाया, कैसी है? मैंने अर्ज किया, न्यूप्लेन के हमले और इस सिलसिला में मारी वालिसो साका से इसके मौशके का कसद है। इसमें तारीख भी है और मगरब की सियासी और इखलाकी जिंदगी की झलक भी। हजरत अलमा ने तस्वीर के मतलब फिर कोई सवाल नहीं किया, गोया इनकी तरफ से इजाज़त थी कि जवेद इस किस्म की तस्वीर देख सकता है, मगर यूं न्यूप्लेन की शख्सियत का जिक्र छिड़ गया। क्या न्यूप्लेन मुसलमान था? इस्लाम के मतलब इसने जिन ख्यालात का इजहार किया इनसे क्या नतीजा अखज किया जाए? वो खालिस्तन फ्रांसीसी नसाब था या मखलूत नस्ल? क्या इसकी रगों में फिल वाक़े अरबी खून मौजे जान था? इरशाद हुआ, हमें भी अहले यूरोप की तरह अपने रजाल और मशाहिर की शख्सियतों पर कलम उठाना चाहिए, मगर अफसोस है हम में कोई सीरत नगार है ना किसी को सीरत नगारी से फन से दिलचस्पी है। हालांकि सीरत निगारी हयात मिल्ली के इस्तकाम का बहुत बड़ा जरिया है। अली बख्श चाय लेकर आया और प्याली बनाकर हजरत अलामा की खिदमत में पेश की। मैंने अर्ज किया, अहले यूरोप में बाज़ का तो ये भी ख्याल है कि नादर शाह ईरानी की शख्सियत न्यूप्लेन से किसी तरह कम नहीं थी। नंबर एक, दोनों बहुत बड़े सिपाही थे। एक इतिहाद यूरोप का ख्वाब देख रहा था, दूसरा इतिहाद इस्लामी का। फ़र्क सिर्फ इतना है कि न्यूप्लेन ने इस तहजीब व तमद्दन में आंखें खोली जो अपने शबाब पर थी और नादर शाह ने इस दुनिया में जिसका जवाल सदियों पहले हो चुका था। सफ़ा नंबर 260। अरशाद हुआ, तुम्हें चाहिए इस मौजू पर कुछ लिखो। मैं कहना चाहता था कि हालात से मजबूर हूँ वरना शायद इस मौजू पर कलम उठाता, लेकिन खामोश रहा। हजरत अलामा ने चाय पी ली तो हुक्के का काश लगाया। मैंने अर्ज किया, बच्चों की गवर्नेंस कहती है जर्मनी से किसी शख्स ने जिसे योग से बड़ी दिलचस्पी है इन्हीं लिखा है कि योग के बारे में किताबों की कोई फहरिस्त भेज दें। अर्शाद व स्वामी व विक्का नानद ने इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा है, गो बिल्कुल लच्छर इनकी तसनीफात की फहरिस्त भेजी जा सकती है। नंबर 2, हिंदू सूफी रामकृष्ण बंगाल के पैरो। चाय ख़त्म हुई तो हज़रत अलामा ने कुछ देर आराम फरमाया, लेकिन मालूम होता है कि वादत हयात का ख्याल इनके जहन में घूम रहा था। अरशाद व वादत हयात का तसव्वुर कितना मुश्किल है, ये अमर के बावजूद इनफरादियत के अफराद की मिसाल नफ़्स से वहदा की है, आसानी से समझ में नहीं आता, इसका समझना बड़ा दुश्वार है। नंबर 3, लुकमान 28। नंबर 4, इसलिए कि अल्लाह का नफ्स वहदत के बावजूद हर फर्द की खुद ही अपनी जगह पर यकता है, यूं इसकी इनफरादियत और जुदागाना तशख्स की नफी नहीं होती। फरमाया, बरगसा ने इस वहदत के पेशे नज़र अफराद के बाहमी तल्लक को लासिल्की के तल्लक से ताबीर किया है। नंबर 1, वायरलेस। मैंने अर्ज़ किया, ये तशबीह तो बड़ी खूब है, लेकिन बरगसा के मुतल्लक एक ख्याल ये भी तो है कि मालूम नहीं सही है या गलत, कि इसका फिक्र खालसन फलसफियाना नहीं बल्कि शायराना भी है। सफ़ा नंबर 261। अरशाद हुआ, ये ख्याल इसलिए पैदा हुआ है कि मौजूदा ज़माने में वही एक शख्स है जिसने हयाती मुबास पर गहरा गौर व फिक्र किया है। यूँ भी कुदरत ने अदाए मतलब के लिए इसे एक ख़ास मलका दिया है, यही वजह है कि इसकी तहरीर बड़ी शगुफ्ता और सहराना है। अस्तआरा तो इसे फौरन सूझता है, बरकैफ लास्कली की तशबीह से इसे ये कहना मंजूर है कि इंसान महज जिसम नहीं, जैसा कि मादीन का ख्याल है, जिसम से महदूद जैसा कि हम महसूस करते हैं। मतलब यह है कि जिस्म ने हमारी जात के इर्द गिर्द जो हसार खींच रखा है वो इसके तशख्स का इख्तियारी मजर है। नंबर 2, अखबारी यानी जिसका हमारे हवास मुशाहदा करते हैं। जिस तरह जिस्म इंसानी का तल्लक सारी कायनात से है और सारी कायनात इसके हवाल में हिस्सा लेती है, बाइना नफस इंसानी का मामला है कि इस एक नफस का दूसरे नफस से जो तल्लक है इसमें बाद मकानी खारिज नहीं होता। मैंने कहा, पेरिस में जब आपने बरगसा से मुलाकात की और गुफ्तगू हुई तो क्या इसकी कोई याददाश्त भी ली गई थी? फरमाया, अमराव सिंह मेरे साथ थे, गुफ्तगू भी इन्हीं के तवसत से होती रही और इन्हीं ने इसे कलम बंद भी किया, मगर इस बुरे तरीके से कि बाद में इन्हीं खुद भी अपनी तहरीर का पढ़ना मुश्किल हो गया। नंबर 3, हजरत अलामा के दोस्त और कदरदान सरदार जोगिंदर सिंह, जो जोगिंदर नगर से, इनका नाम आज भी जिंदा है कि भाई और मशहूर फनकार अमृत शेर गुल के वालद, ज्यादातर फ्रांस ही में क्याम करते, वहीं शादी की। अरशाद हुआ, इस गुफ्तगू में बरकले के मुतल्लक भी खूब खूब बातें हुई। सफ़ा नंबर 262। बरकले की अहमियत मौजूदा जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नंबर 4, मादे की नफी के बायस मुलहजा हो, तश्कील जदीद खुतबा दोम। फिर फरमाया, इस गुफ्तगू का महज मशहूर फनकार को भेज दिया गया था, मालूम नहीं वो कहीं मौजूद भी है या जाया हो गया। मेरे इस सवाल पर कि आपने बरगसा से क्या अपने नजरिया जमा का जिक्र भी किया था, फरमाया, हाँ इसका जिक्र आया था और बरगसा को भी बड़ा अफसोस था कि मैंने इसे क्यों जाया कर दिया। नंबर 1, रकमुल हरूफ को ठीक याद नहीं रहा किस साहिब फन का नाम लिया गया था। नंबर 2, डॉक्टर मैगरेट की राय से अरजूदा खातर होकर और जिसका जिक्र इससे पहले आ चुका है। सफ़ा 263। 4 शंबा 16 फरवरी। आज हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर हुआ तो दोपहर हो चुकी थी। हजरत अलामा हसबे ममूल आराम फरमा रहे थे। मैंने सलाम अर्ज किया और मिजाज पूछा तो मालूम हुआ इन्हीं एक तरह से मेरा इंतजार था। फरमाया, तुम आ गए, सुबह मुझे फिर दमे की शिकायत हो गई। मैंने ये सुना तो बड़ी तशवीश हुई। हजरत अलामा ने फिर फरमाया, कोई बात नहीं, अल्लाह के फजल से अब अच्छा हूँ। हजरत अलामा के इस अरशाद से कुछ इत्मीनान हुआ। मैंने दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत देकर उन्होंने फरमाया, कुछ खत रखे हैं, इनका जवाब देना बाकी है। जवाब लिख दो। मैंने कलमदान उठाया और कलम कागज लेकर बैठ गया। हजरत अल्लामा ने एक-एक खत का मुख्तसर जवाब लिखवाया, किसी का अंग्रेजी, किसी का उर्दू में। इनमें एक खत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के एक तरफदार के नाम था, इनके इस नजरिए के बारे में के कौमें उत्तान से बनती हैं। खत लिखे गए तो फरमाया, हजरत तालूत मौलाना से दरियाफ्त करें इनके इरशाद की हसीयत मशवरे की है या एक अमरे वाकिया के इजहार की। नंबर एक, मौलाना हुसैन अहमद के तरफदार थे। कौम और वतन की बहस में अक्सर अखबारों में कोई ना कोई मजमून लिखते रहते। इनका कहना था कि मौलाना हुसैन अहमद का मौकफ ये नहीं कि कौमें उतान से बनती हैं, बल्कि ये है कि बहालत मौजूदा जो भी कौम है इसकी एहसास कौमियत जगराफियाई है, यानी वतनी। देखिए जमीमा। नंबर दो, लिहाजा ये सवाल के इस अमर वाकई का इजहार बतौर एक असूल के किया गया या एक बात थी। सफ़ा नंबर 264 के नज़रे बर हालात इत्तफाकन ज़ुबान पर आ गई। फिर इरशाद हुआ, मौलाना के ख्यालात के मुतल्लिक एक पूरा मजमून मेरे धन में है, कल इसका कलम बंद हो जाना ज़रूरी है, किसी वक़्त जाओ और कलम बंद कर दो। ये कहकर हजरत अल्लामा बासबाब अज़हलाल लेट गए। अली बख्श ने तकिया सीधे किए, मैंने आगे बढ़कर कंधों को सहारा दिया और खामोश बैठ गया। गुफ्तगू से भी कसदन एहतजाज किया, देर तक यूं ही नशिस्त रही। हजरत अल्लामा कभी कभी करवट लेते और एक आध बात कर लेते, फरमाते, हिटलर और शोशिंग की मुलाकात का नतीजा क्या होगा, यूरोप के हालात क्या हैं, मैं भी मुख्तसरन जवाब अर्ज करता। फिर शायद हजरत अल्लामा की आंख लग गई, मैंने सोचा मेरा बैठे रहना ही मुनासिब है। अली बख्श गलबन किसी काम में मसरूफ था और मीम शीम भी अभी नहीं आए थे। नंबर एक, इसलिए कि ऑस्ट्रवी चांसलर डॉक्टर डॉल्फनस कत्ल हो चुका था और हिटलर मिस्र था कि डॉल्फनस का जानशीन शोशिंग ऑस्ट्रिया का अलहाक जर्मनी से तस्लीम कर ले, लिहाजा डर था यूरोप में जंग की इब्तदा ना हो जाए। हजरत इलामा ने नींद ले ली, अली बख्श आ गया हुक्के और चाय का एहतमाम करने लगा, मीम शीम भी आ गए थे। सपहर कब की हो चुकी थी, मैंने सोचा शाम को फिर हाजिर होना है, इजाजत तलब करूं, लेकिन फिर इस ख्याल से कि शायद कुछ अशार कलम बंद करना हो, अर्ज किया, कुछ अशार तो नहीं है, फरमाया नहीं। सफा नंबर 265, जुमेरात 17 फरवरी। हजरत अल्लामा ने मजमून नहीं लिखवाया, अरशाद हुआ मौलाना के जवाब का इंतजार कर लेना चाहिए, यानी इनके तरफदारों के जवाब का। फिर तुलवे इस्लाम का जिक्र छेड़ दिया, मैंने अर्ज किया मुझे तो अहले दिल्ली से कोई तवक्को नहीं। नंबर दो, के इनसे इत्तफाक राय हो सकेगा या नहीं। हजरत अल्लामा की तबीयत अच्छी नहीं थी, अज़्मला हाल बढ़ रहा था और मैं बड़ा फिक्रमंद था। खामोश, ज्यादातर खामोशी रही बजाय इसके कि कभी दवाओं का जिक्र आ जाता, कभी परहेज आवारज की कमी और ज्यादती का। इसी असना में चाय पी गई और अली बख्श बैठा हजरत अल्लामा का बदन दबाता और दिल बहलाता। शाम के करीब तीन इंजीनियर आ गए, मालूम हुआ इनका तल्लक सरकार बहावलपुर से है और इंजीनियरों के सालाना इज्तिमा पर आए हैं। ये हजरात ज्यादा देर नहीं ठहरे, हजरत अल्लामा की जियारत और पुरशस मिजाज के लिए आए थे, लिहाजा गुफ्तगू भी हजरत अल्लामा की सेहत ही की रही। बहावलपुर के मुतल्लिक ये सुनकर तज्जब हुआ कि रियासत का बहुत सा इलाका एक तरह से हुकूमत के पास रहन है और नहरों से भी ज़रायत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। नंबर तीन, कैसे मैं इस अमर की तहकीक नहीं कर सका और अब के पाकिस्तान कायम हो गया है, ज़रूरी भी नहीं रहा। सफ़ा नंबर 266, जुमातुल मुबारक 18 फरवरी। दिन भर हाजिरी का मौका नहीं मिला, शाम को हजरत अल्लामा की खिदमत में पहुंचा तो इन्हीं बड़ा मुनासिब पाया। सेहत का तो जो रंग है सो है, हजरत अल्लामा को दुख इस बात का है कि मौलाना हुसैन अहमद को अपनी गलती पर इसरार है और अब उन्होंने अपने इरशाद के अलावा कि कौमें उतान से बनती हैं एक नया नजरिया कायम किया है, वो ये कि इस्लाम में कौम और मिल्लत दो अलग अलग वजूद हैं। हजरत अल्लामा ने फरमाया अब तो मजमून लिखना जरूरी हो गया है, نمبر ایک یعنی امت، قرآن پاک نے امت اور ملت میں فرق کیا ہے، امت جسم ہے، ملت جان ہے۔ پھر دیر تک مسلمانوں کے علمی زوال اور فقدان بصیرت پر اظہار تاسف فرماتے رہے، ارشاد ہوا یہ سیاست کا چکر بھی عجیب ہے، انگریزوں کی ضد میں کس طرح تلبیس حق بالباطل سے کام لیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، مسلمان کیوں نہیں سمجھتے، اسلام کے اجتماعی روح کیا ہے، وہ عالم اور صوفی کیا ہوئے جو دین کے رمز شناس تھے، فرمایا کیسے کیسے الفاظ ہیں جو لوگوں کی زبانوں سے نکل رہے ہیں، قوم متحدہ، قومیت، وطن، وطنیت، آزادی، خود اختیاری، لیکن کوئی نہیں سمجھتا آج کل سیاست میں ان کے معنی کیا ہیں، ارشاد ہوا ان الفاظ کے معنوں کا متعین ہو جانا ضروری ہے، ان کا تجزیہ بھی ہو جانا چاہیے، یہ الفاظ عام ہو رہے ہیں، ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی، لیکن مسلمانوں کو احساس ہی نہیں ہے ان کس قسم کی جدوجہد درپیش ہے، عزروِ سیاست ہی نہیں اخلاقاً اور ذہناً بھی، کاش مسلمان کوئی سیاسی فکر پیدا کریں۔ صفحہ نمبر 267، حضرت علامہ دیر تک مسلمانوں کے ذہنی تعطل پر افسوس کرتے رہے، بیچ میں کچھ آرام فرما لیتے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے، حقے کا کش لیتے یا اپنے مخصوص انداز میں اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتے، ایک مرتبہ علی بخش کو بلوایا اور چلم کی طرف اشارہ کیا، علی بخش نے چلم بدلی، کھانے کا پوچھا اور پھر تھوڑی دیر میں کھانا لے آیا، حضرت علامہ نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے، علی بخش اور رحمہ بدن دابنے لگے، میم شیم آ گئے تھے، پھر چودھری صاحب بھی تشریف لے آئے، حسب معمول مزاج پوچھا اور باتیں کرنے لگے، دعا کا وقت ہو گیا تھا، حضرت علامہ نے دعا کھائی، بچوں کا پوچھا کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، حکیم صاحب کب آئیں گے، سیاست کا کیا رنگ ہے، یونینس پارٹی کیا کر رہی ہے، لیگ کس حال میں ہے۔ نمبر ایک، حضرت علامہ کے سرحانے برقی گھنٹی کا سوئچ پڑا رہتا تھا، آواز میں تو اب اتنی سکت نہیں تھی کہ علی بخش کو آواز دیتے، ان کا قاعدہ تھا کہ علی بخش کو پکارتے تو بخش کو خاصا طول دیتے۔ نمبر دو، کرشی صاحب پھر جیسے کوئی خیال آیا اٹھ کر بیٹھ گئے اور تکیے سے ٹیک لگا کر مجھ سے سوال کیا، قوم اور ملت کے امتیاز پر اصرار کیا جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا، میں نے عرض کیا یہی کہ اس امتیاز کی کوئی حقیقت ہوتی تو قرآن پاک سے دو الگ الگ اجتماعی نظامات کی موجودگی ثابت ہو جاتی، ایک قومی وجود ہوتا دوسرا ملی، ارشاد ہوا یہ بحث کی نہایت اچھا پہلو ہے، پھر فرمایا تاریخی اعتبار سے کیا اس سلسلہ میں تم کوئی مواد جمع کر سکتے ہو، میں نے کہا بہت کافی، اجازت ہو تو اس سلسلہ میں کچھ پیش حوالے پیش کر دوں۔ صفحہ نمبر 268، فرمایا مثلا میثاق مدینہ یعنی اس معاہدے کا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف آوری پر مہاجرین و انصار اور یہود مدینہ سے کیا، یہ معاہدہ ابن ہشام میں محفوظ ہے، ارشاد ہوا اس میں خاص بات کیا ہے، میں نے کہا یہی کہ حضور نے مدینہ منورہ میں جس ریاست کی بنیاد ڈالی اس میں یہود کو شریک تو کر لیا لیکن اس کے باوجود انہیں ایک الگ قوم ٹھہرایا، فرمایا اس معاہدے کی پوری نقل حاصل کرو۔ نمبر ایک، میثاق مدینہ ایک نہایت اہم سیاسی اور آئینی دستاویز ہے جس سے کئی ایک اور نہایت اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں، راقم الحروف کا خیال ہے کہ اس میثاق کی اہمیت کا بہت کم اندازہ کیا گیا، شاید اسی لیے کہ یہود کا رویہ شروع ہی سے مخصمانہ تھا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، رہے نصارہ سو ان کا عقیدہ ہے کہ جو خدا کا ہے خدا اور جو کیسر کا ہے کیسر کو دے دو، انہیں صرف اپنی عافیت مطلوب تھی، کوئی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں تھی، زیادہ تر زور رہبانی زندگی پر تھا، فتوحات سے بھی صورتحال میں کوئی مفید مطلب تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، پھر دولت امویہ کے قیام سے تو اسلامی ریاست کی نوعیت ہی میں بنیادی فرق آ گیا۔ صفحہ نمبر 269، شمبا 19 فروری، मिसाके मदीना की पूरी नकल हजरत अलामा की खिदमत में पेश कर दी, फरमाया तर्जमा भी हो जाए तो अच्छा है। दोपहर हो चुकी थी, ज़्यादातर वक़्त कुतुब खाने में गुजरा। पंजाब यूनिवर्सिटी में अली बख्श आ गया, हजरत अलामा को दुआ खिलाई और इनका बदन दाबने लगा। हजरत अलामा लेट गया ताकि ज़रा सो लें। मैं तर्जमा करता रहा और सोचता रहा कि हजरत अलामा बड़े मखमहल हैं, बयान कैसे लिखा जाएगा। आध पौन घंटे के बाद हजरत अलामा उठकर बैठ गए। अली बख्श ने चिलम बदली, तर्जमा हो चुका था। मैंने कागजात तपाई पर रख दिए। अरशाद हुआ, मौलाना हुसैन अहमद ये तो कह नहीं सकते कि मिसाक़े मदीना इनकी नज़र से नहीं गुजरा। तज्जब है उन्होंने इस पर गौर नहीं किया और एक गलत बात कह दी। फिर ज़रा सुस्ता कर बयान के बारे में गुफ्तगु शुरू कर दी और तरह तरह से अजहार ख्यालात करते रहे। यही कि इस्लाम बनाए कौमियत है और इसका सर चश्मा है रसालत। लिहाजा इस्लाम एक सियासी इज्तमाई मुआशरा है। नंबर एक, देखिए रमूज बेखुदी अनवान रसालत। इज रसालत दो जहां तकवीन माँ। नंबर दो, आज कल की इस्तलाह में सिविक सोसाइटी या सोशो पॉलिटिकल ग्रुप। देखिए खुतबा आलाबाद। मैंने अर्ज किया इस सियासी इज्तमाई मुआशरे को कुरान मजीद ने उम्मत से ताबीर किया है। मैंने ये बात इसलिए भी कही कि मिसाके मदीना में लफज उम्मत इस्तेमाल हुआ है। सफा नंबर 270। नंबर एक, आन हम यानी मुसलमान दूसरे इंसानों से अलग एक उम्मत हैं। इब्ने हिशाम 341 नुस्खा दियो स्टेटस मेलेड। हजरत अलामा ने फरमाया मौलाना आलम दीन हैं, इस्तलाहात दीनी से बेखबर नहीं हो सकते, वो खूब समझते हैं कि उम्मत के मानी क्या हैं। फिर फरमाया अजीब बात है, उन्होंने कौम और मिल्लत में इम्तियाज पैदा करते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। हजरत अलामा ने फरमाया तो इनका ये शेर बेअख्तियार जुबान पर आ गया, कलंदर जुज दो हुरफ ला इलाह कुछ भी नहीं रखता, फकिया शहर करून है लुगत हाय इजाजी का। नंबर दो, चुनाचा जब बयान मरतब हुआ तो इसमें यह शेर शामिल था। हजरत अलामा को नींद आ रही थी, मैंने कहा आप आराम फरमा लीजिए, शाम को जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। सरे शाम हाजिर हो गया। हजरत अलामा का अज़्म लहाल दूर तो नहीं हुआ, लेकिन मालूम होता है तबीयत कदरे बेहतर है। चौधरी साहब पहले से मौजूद थे और गुफ्तगू वही बयान की थी। इतने में राजा साहब आ गए और फिर मीम शीम आ बैठे। हजरत अलामा मिसाके मदीना पर तबसरा फरमा रहे थे। फरमाया ये जो अरशादे बारी ताला है, कुंतुम खैरुल उम्मत अखरजत लिन्नास, तो साबित हुआ है कि उम्मत की बिना वतन की बजाय अकीदे पर है, और अकीदे का तकाजा था कि हजूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाए। मिसाके मदीना से अमलन इस पर मोहर साबित कर दी। फरमाया मौलाना हुसैन अहमद का फ़र्ज़ है कि इसी असूल की बिना पर जो मिसाके मदीना में कायम किया गया, कांग्रेस से मुफाहमत का मुतालबा करें, बजाय ये कहने के कौमें उतान से बनती हैं।